भी निराशा पर प्रार्थना करता हूं कि आज के पावन प्रसंग पर अपनी मंगलवाणी से हम सबको लाभान्वित करें परम पूज्य कृपाण छुलक नये सागर जी मान।
कुंतल गिरी के संत तुमने कर दिया कमाल, जीता महान मूल बिना खड़ग बिना ढाल। चारित्र चक्रवर्ती गए सोग तुम सिधार, भीषा विपत्तियां भी ना कुछ ला सकी विकार। मुख पर अपूर्व शांति आत्म तेज का निखार, ओ दिव्य ज्योति तुझे सबका है नमस्कार। श्रद्धा से झुके चरणों में कोटि कोटि भाल, कुंथल गिरी के संत तूने कर दिया कमाल। इस बीसवीं सदी का संत था तू बेमिसाल, कुंथल गिरी के संत तूने कर दिया कमाल। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। चारे चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। संत सोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री क्षमाचार्य जी महाराज की जय। सबसे प्रथम आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी द्वारा लगभग 25 वर्ष पूर्व जो आचार्य श्री शांति सागर जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई थी, उसी को यहां कुछ पंक्तियों के रूप में प्रस्तुत करता हूं। निश्चिंत फोन डर निश्चल नित्य भारी, थे ध्यान मान डरते तपियो करारी। थे शीत ताप सहते गए नहानी, तो सर्वता सरसकार करते सुपाने। प्राय कदाचर मुक्त धराती, मूर्ति न पूर्व में थी। चरित्र का नवीन पुनीत पंत, जो भी दिख रहा तो दैन संत। अब वो यहां से ऐसी जी स्वयं कह रहे हैं, जब वो 8 या 9 वर्ष के थे तब उन्होंने आचार्य शांति सागर जी के दर्शन शेरबाग में किए थे और उनके प्रवचन सुन करके उनके जीवन पर जो प्रभाव पड़ा उसी को यहां शब्दों में। थे शेरबाल गुरु जी एक बार आए, इतना सकल मानव को सुनाए। भारी प्रभाव मुझ पे तो भारती का, देखो पड़ा इसीलिए नहीं अभी का। अच्छे बुरे सब सदाना कभी रहे हैं, और जन्म भी मरण भी अनिवार्य ही है। आचार्य वर्य गुरुवर्य समाधि लेके सानंद दे तज शांति गए अकेले। संतोष कोष गतिरोत सुशांति सिंधु, मैं बार बार तो पाद पयोज बंधु। हूं ज्ञान का पतन शिष्य अवश्य वाले, विद्या सुशांति पद में धरता शुभाल। चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी के समाधि के लिए उनको 42 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इसी के यहां समाधि और संलेखना ये दो बातें होती हैं। संलेखना अर्थात सत लेखना, यानी सत अर्थात समीचीनता पूर्वक, लेखन यानी कष्ट करना अर्थात देहधारी अन्न आदि के माध्यम से क्रम अनुसार त्याग करना, बाह्य संलेखना या द्रव्य संलेखना कहलाती है। भीतरी के इंग्लैंड जिसकी स्थिति होती है वह समाधि कहलाती है। तो यह समाधि क्यों ग्रहण की जाती है, इसके लिए आचार्य शांतवत देव जी कहते हैं, उपसर्गे दो वृक्षे जैसे उजायाम समित प्रतिकारे धर्माए तनु विमोचन मारू संलेखना मारिया। अलग्वाधरती शंकर देव आदि कहते हैं उस स्थिति में समाधि व संलेखना ग्रहण की जाती है जब उपसर्गे अर्थात त्रियंस्कृत या दोकृत या अचेतनकृत या मनस्कृत इस तरह का उपसर्ग आ जाए जो नित्यपिति काल से रहित है अर्थात जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सके इस स्थिति में इसको ग्रहण किया जाता है। इसके बाद कहते दो वृक्षे अर्थात दो वृक्षानी दुष्काल अकाल हो जाने पर जब वृक्षा वृत्ति की प्राप्ति न हो तब भी इसके लिए ग्रहण किया जा सकता है। जरा जी अर्थात वृद्धावस्था के होने पर भी इसके लिए ग्रहण किया जा सकता है क्योंकि वृद्धावस्था में यह शरीर कार्य नहीं करता अर्थात जो धर्म या तप संयम आदि का पालन होना चाहिए इस देह से वह अपना कार्य बंद कर देता है। इस अवसर पर भी इसके लिए ग्रहण किया जा सकता है। और रोजायाम रोग के होने पर वह रोग भी इस तरह का हो जो प्रतिकार से रहे तो अर्थात जिस प्रकार से वह किसी तरह से भी दूर न किया जा सके इन सभी तरह की स्थितियां उपस्थित होने पर धर्मायतम तनु विमोचन अर्थात धर्म की रक्षा के लिए धर्म अर्थात व्रत संयम तप आदि जो जीवन में ग्रहण किए हैं इनकी पूर्णता के लिए अर्थात इनकी रक्षा के लिए इस देह का त्याग किया जाता है। देह का त्याग इस तरह से जिस तरह से किसी मकान में अग्नि लग जाती है तो भरपूर प्रयास तो यही किया जाता है कि उससे अग्नि को बुझाया जा सके लेकिन सभी तरह के प्रयत्न किए जाते हैं फिर भी वह अग्नि अगर नहीं बुझती है तो उसमें जितने भी बहुमूल्य सामग्री है धन संपत्ति आदि है उसको वहां से निकाल दिया जाता है और मकान को छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से यह देवी कहलाती है। देव यानी जब तक धर्म का परिपालन हो सके तब तक इसका त्याग नहीं करना लेकिन इस तरह की उपस्थिति आ गई है तब उसके लिए धर्म व्रत संयम आदि की रक्षा के लिए इसका देव का त्याग किया जाता वो भी संकलित रहे अर्थात राग देश या कसायों के अभावपूर्वक जो शंका पूर्वक देव का त्याग किया जाता है वही कहलाता है समाधि या संलेखना। इसके लिए ऐसा भी कहा है जीवन सीव वस्त के समान जिस प्रकार से पुराना वस्त्र फट जाता है उसके लिए बदल करके नवीन या नूतन वस्त्र को ग्रहण किया जाता है। इसी तरह से देह है इस देह की आयु पूर्ण होने पर इस देह को बदल दिया जाता है था इसमें से आत्मा जो रहती है वह तो अजर अमर है वह कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होती है लेकिन वस्त्र के समान इस देह को बदल दिया जाता है। जिस प्रकार से दीपक हुआ करता है उसमें जितना तेल होता है वह दीपक उतना ही जलता है इसके बाद वह बुझ जाता है। इसी तरह से यह देह भी होती है इसमें जीवन यानी आयु रूपी जितना तेल भरा है उतना ही वह टिक सकेगी चल सकेगी इसके बाद इसका मरण अनिवार्य है। तो मरण जो आचार्य शांति सागर जी ने आज के दिन पूर्ण किया यह सभी के लिए अहोभाग्य का विषय इन्होंने इंद्री नाम के लिए प्राप्त हुए अर्थात जिसमें ये किसी दूसरे के द्वारा इन्होंने सेवा शुश्रूषा नहीं कराई अर्थात स्वयं ही अपनी देह की परिचर्या में रख ले किसी दूसरे के द्वारा वही व्यक्ति का इसमें निषेध हो जाता है। एक कहलाता है प्रायोगवान जिसमें दोनों तरह के अर्थात स्वयं और दोनों तरह की वही व्यक्ति कर सकते हैं दूसरे लोग और अपने देह से। और एक कहलाता है भक्त प्रत्याख्यान जो के लिए इसका उत्कृष्ट काल होता है 12 वर्ष का इसमें तंत्र से यम आदि के माध्यम से आहार आदि का त्याग किया जाता है। तो आचार्य शांति सागर जी ने इंद्रिय मरण के लिए प्राप्त हुए। वैसे सामान्यतः तो मरण के 5 भेद कहे जाते हैं बाल बाल मरण पंडित मरण मुस्लिम पंक्तियों के साथ में गुरु सिद्धांजलि उनके लिए बारंबार
सभी जानते हैं, सब लोग उनसे धर्म की बात सुनते हैं सहजता से सरलता से हमें हृदय ग्राह्य हो जाती है। उनके लिए मैं मात्र दो पंक्तियां कहूं इतनी ही पर्याप्त होंगी। धन वैभव के न भाई इन्हें आलय है, धन वैभव के न भाई इन्हें आलय है, ज्ञान चारित्र के ये सच्चे हिमालय हैं। मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं, मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं, सचमुच ये चलते फिरते जिनालय हैं, ये चलते फिरते जिनालय। जिनसे हमें सब कुछ मिल रहा हो हमारे लिए तो वही आद्य गुरु होता है। भगवान का बिंब हमसे कुछ कहता नहीं है, हमसे तो गुरु ही हमारा हाथ पकड़ करके हमें अच्छी राह पर चलाने के लिए कहते हैं और गलत रास्ते पर रोकते हैं कि हम मत जाओ। इसलिए गुरु ही हमारा आद्य भगवान होता है। ऐसे यह संत हमारे बीच हैं। ये कैसे हुए होंगे इस संत समागम का ही एक फल है। यदि सिंगल जी के जीवन में संत समागम नहीं हुआ होता तो शायद इनके परिवार में ऐसा रत्न नहीं होता, इनकी परंपरा में रहा है। आपके पिताश्री और उनके और भी सब धर्म से संस्कारित थे। पूज्य वर्णी जी के सानिध्य में इनका बहुत समय बीता है और उनसे संस्कृत होने की वजह से ऐसा रत्न हमें प्राप्त होगा। ये संत समागम का ही फल है। मैं दूसरी बात और एक संत समागम के फल की बात कहना चाहता हूं कि संत के चरणों में आने के बाद या जहां संतों के चरण पहुंचते हैं वहां कांटों में भी फूल खिल सकते हैं, इसे भूलना मत। मैं गुना के उस महान हस्ती का भी उल्लेख करना चाहता हूं जिसकी आप कविता सुन रहे थे अभी, मगन लाल जी कमल। आप नहीं जानते होंगे संत समागम से क्या परिवर्तन आता है। आप गुना के मोक्ष मंडल के अध्यक्ष हैं, गुना के मोक्ष मंडल के अध्यक्ष। हमारा जब चातुर्मास हुआ तो उसमें आप अध्यक्ष थे और आपके एक साथी एक उपाध्यक्ष थे बाबूलाल प्रकाश चंद जी, जो शायद अब यहां नहीं है, धरती पर नहीं है। एक दो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे मोक्ष मंडल के। बाबूलाल प्रकाश चंद तो 3 महीने तक हाथ बांधे ऐसे खड़े रहते थे, कभी हाथ नहीं जोड़े होंगे उस व्यक्ति ने। लेकिन जब उन्होंने सुना देखा परखा कि आगम की कसौटी पर वास्तव में साधु और साधु के जो वचन होते हैं ये सत्य यही है, ऐसे झुके कि संत के चरणों में आ गए, समर्पित हो गए और इतने भक्त बने कि महाराज जी के पास बैठ करके घंटों तत्व चर्चा करते हैं। ये कभी ना होगा कि तत्व चर्चा करते हैं घंटों बैठ करके। इनकी बुद्धि में ऐसा परिवर्तन आया, भगवान की कृपा कहिए कि बुद्धि सम्यक हुई। महाराज की सेवा में रहते हैं, आहार दान देते हैं, आते हैं, दर्शन का लाभ लेते हैं, धर्म का उपदेश सुनते हैं। मैं सबको संत समागम का ही फल मानता हूं। आप भले निमित्त को ना मानते हैं लेकिन मैं तो मानता हूं कि निमित्त कुछ करता है, इसलिए इनके जीवन में परिवर्तन आया। मेरी भावना है कि ऐसे संतों का समागम जहां जहां जिस जिस जगह होता हो वहां के लोगों में ऐसी ही सम्यक बुद्धि उत्पन्न हो कि वे वस्तु स्वरूप को ठीक ठीक समझें, कसाय को विसर्जित करें और अपनी आत्मा के कल्याण में लगेंगे तो संत समागम का एक फल मिलेगा। दूसरा हमारा बिंदु जो आज का महान पर्व साधना का पर्व है, स्मरण के लिए साधक जब से अपना ये जीवन जीना प्रारंभ करता है तब से उसकी दृष्टि में वह एक ही क्षण दिखाई देता है कि कब मेरा समाधि पूर्वक मरण हो। जिसके जीवन में वो समाधि का दिन दिखाई नहीं दे रहा, वो क्षण दिखाई नहीं दे रहा है, वो साधक साधक नहीं माना जाएगा। इस धरती पर जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म लेने के साथ ही मरना प्रारंभ कर देता है। आपको नहीं देखता हो मरण, लेकिन प्रतिपल मर रहा है। आप तो तभी ऐसा मानते हैं कि जिस दिन वो पूरा मर जाता है तो आप कहते हैं मर गया है, लेकिन यहां तो एक शरीर को छोड़कर के यह आत्मा जब नए शरीर के लिए जाना प्रारंभ कर देती है तो कहते हैं उस नए शरीर को ग्रहण करने से पहले तीन समय ये अपने व्यतीत कर देती उस जिंदगी के, नई जिंदगी के तीन समय आने जाने में भी व्यतीत कर देती है। और वहां पहुंच करके जन्म कब होगा उसके पहले कोई कोई मनोमा है, कोई आत्मा है, तो जिनका जितना समय उतना समय गर्भ में कर देते हैं, वो जन्म होते ही साथ फिर एक एक क्षण उनका ऐसा बीत जाता है और आयु पूरी हो जाती है और फिर मर जाता है। मरण क्रम क्रम से होता है, एक साथ नहीं होता। जन्म एक साथ होता है लेकिन मरण क्रम क्रम से होता है। जिसने मरण की परिभाषा समझ ली, जिसकी दृष्टि में वो मरण दिखाई देने लगा, वह साधक परम साधक है। धन्य उसकी साधना जो साधना के पथ पर उसने सब कुछ छोड़कर के दिगंबर अंगीकार किया एकमात्र अपनी आत्मा की उपलब्धि के लिए। संलेखना की साधना घर में रहने वाले व्यक्तियों से मैं कहना चाहता हूं, ये वो साधना है अंतःक्रियादिकरणम तपः फलः तर्षणस्तौते तस्माद्यावत् दुग्धं समाधि मरणे प्रियतितव्यम्। ये समूची जीवन की साधना का अंतिम क्रियाकर्म है, उसका एक फल है जिसमें अपने जीवन में संलेखना उपलब्ध कर ली, उसने अपने जीवन रूपी शिखर के ऊपर कलश चढ़ा लिया और संलेखना का फल नहीं मिला तो उसकी साधना बेकार हो जाती है। ये साधनाएं परीक्षा की तरह है, ये परीक्षा की घड़ी है संलेखना। बालक परीक्षा देते, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, कब देते हैं परीक्षा? मार्च अप्रैल मई जून में उनके परीक्षाएं होगा करती हैं, परीक्षा देते हैं, फिर उसके बाद उनका परिणाम घोषित होता है कौन पास होगा कौन फेल होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि परीक्षा के दिन भी वहां बैठते हैं पहले से कुछ तैयारी करते हैं? वर्ष भर जब से क्लास प्रारंभ होती तब से रेगुलर कंटिन्यू वो क्लास में बैठता है और जो वहां का अध्यापक पढ़ाता है उसे ध्यान से पढ़ता है, बार बार अध्ययन करता है और वर्ष भर के अध्ययन के उपरांत वह परीक्षा में बैठता है और उसका परिणाम प्राप्त करता है। जो वर्ष भर नहीं पढ़ते, जिन्होंने कभी किताब खोल करके नहीं देखी, क्या वह परीक्षा दे पाएगा? दे देने के बाद क्या उसका फल उसे प्राप्त हो पाएगा? कुछ नहीं होगा, खाक प्राप्त करेगा। किताब ही नहीं खोली वो क्या परीक्षा में बैठेगा? इस साधना है, जो पहले से साधना करता है परीक्षा में सफल होता है। संलेखना की साधना भी ऐसी ही साधना है, जो साधना के मार्ग पर निकल जाने से क्रम क्रम कठोर से कठोरतम अपने कसायों को उत्साहित करने की, कसायों को दूर करने की साधना करता है, वही व्यक्ति संलेखना को प्राप्त होता है, आत्मा को उपलब्ध करता है। आपके यहां अभी रक्षाबंधन पर्व आया था और रक्षाबंधन के दूसरे दिन एक त्योहार मनाया जाता है यहां पर, आपके यहां मनाया जाता है मुझे मालूम नहीं, वो होता ना वो भुजरिया, क्या बोलते हैं आप लोग, भुजरिया होती ना, याद आ गया मुझे, आपको मालूम है कि भुजाएं कैसे उगाई जाती हैं। घर के किसी अंधेरी कोठरी में, किसी अंधेरे स्थान में मिट्टी के एक बर्तन में मिट्टी डाल करके, खाद दे करके उसमें गेहूं डाले जाते, पानी डाले जाते हैं और 8-10 दिन में वो धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं और 10 दिन में वो अच्छे बड़ी मात्रा में हो जाते हैं। ऐसा होता है, पीला पीला होता है, ऐसा लगता है जैसे सोने की बनी हुई हो, लेकिन जब बाहर लाते हैं तो घंटे दो घंटे के बाद सूर्य के प्रकाश और प्रताप में उनकी क्या स्थिति होती है, वो मुरझा जाते हैं, सूखने लगते हैं, क्योंकि वे सुकुमार की तरह सुकुमारता में पली हुई है। उन्होंने सूर्य का प्रकाश और प्रताप का दर्शन ही नहीं किया कि कैसा होता है, इसलिए इस प्रकाश और प्रताप में आने पर वो मुरझा जाते हैं। लेकिन किसान जब खेत में बीज बोता है और बीज बो देने के बाद 2-4-8 दिन के बाद उसमें से अंकुर फूटता है, पौधा निकलता है और पौधा धीरे धीरे जब 15 दिन में बड़ा होता है तो उसका रंग कैसा होता है, कैसा होता, हरा होता है, पीला नहीं होता, हरा होगा। क्यों उसका रंग हरा है और उसका पीला क्यों है? जिसने अपने जन्म से ही अपने को समर्पित करके सूर्य के प्रकाश और प्रताप को सहने की साधना की है, उसका जीवन लहलहाता रहता है और उस प्रकाश और प्रताप में भी, हवा और पानी में भी, बरसात में भी वो स्थायी बना रहता है, वो मुरझाता नहीं है, क्योंकि उसने कठिन साधना की है। दनलप के गद्दों पर सोने वालों, पंखों और कूलर की ठंडी हवा लेने वालों, फ्रिज की ठंडी आइसक्रीम खाने वालों, तुम उस धर्म की बात करते हो जिस धर्म के माध्यम से आत्मा उपलब्ध की जाती है, संलेखना की, तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हो सकता, वो उसके जीवन में ही संभव है जो साधनों से, जो विपदाओं से, उपसर्ग और परिसरों से गुजरता है, वो उसके व्यक्ति के जीवन में ही उस संलेखना सफलीभूत होती है। हमें उन गुजरियों की तरह जीवन यापन करके जीवन समाप्त नहीं करना है। आप संलेखना का नाम सुनकर के आपका चेहरा मिलान हो जाता है, मुरझा जाता है, क्योंकि आपसे वो साधना सहन नहीं हो सकती है, सुन नहीं सकते आप। जहां ऐसी कठोर साधनाओं को सुनते हैं तो आपके द्वारा यही शब्द निकलता है कि क्या रखा इस जड़ की क्रिया में, इस जड़ की क्रिया में से ही चेतन की क्रिया प्रकट होगी, ध्यान रखना, इस जड़ की क्रिया से ही चेतन की क्रिया प्रकट होगी, इसके अभाव में वो चेतनत्व तो अपने विकास को कभी प्राप्त हो नहीं सकते हैं। ऐसे कठोर साधना करने वाले साधक परम तपस्वी इस आद्य संस्कृति के, इस वर्तमान की संश्रमण संस्कृति के संवर्धक संचालक आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने ऐसा दुर्धर अनुष्ठान को धारण करके अपने निर्मल आत्मा की आराधना की थी, वह धन है। उनके जीवन के कई क्षण स्मरण हैं, सुनाने का समय नहीं है। आप चारित्र चक्रवर्ती नामक पुस्तक पढ़िए, आपके लिए एक नई दिशा मिलेगी, सम्यक रास्ता मिलेगा, एकांत का विष आपका विसर्जित होगा और अनेकांत की वह पावन गंगा में आप नहाएंगे और पवित्र हो जाएंगे। यदि वो ना होते तो मैं कहता हूं कि आज हम सब भी यहां ना होते। जैसे हम संतों के चेहरे को देख करके अपना चेहरा दुआ कर लेते हैं, यदि उस समय ही ऐसा किया होता किसी ने और शांति सागर यदि नहीं होते तो ये श्रवण संस्कृति, ये वीर सागर, शिव सागर, ज्ञान सागर, धर्म सागर और विद्या सागर जैसे संत इस धरती पर, फिर तुम्हारा क्या हाल होता? यहां पर कौन तुम्हारे लिए वो रास्ता दिखाता जो आज सैकड़ों और हजारों की तादाद में जिनके उपदेश को सुनकर के अपने जीवन को सुधार रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं? आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज इस शांति सागर जी की ही देन है कि आज हम सब के बीच में ऐसी महान आत्माएं हैं जिन्हें देख करके हम अपने आत्म कल्याण के लिए प्रेरित होते हैं, हम प्रेरणा पाते हैं। उन भव्य आत्माओं के चरणों में भी अपनी भावांजलि रखता। एक समय था कि जब सनातन संस्कृति में इतना सृष्टाचार पनपा था कि साधु निमंत्रण से भोजन करने के लिए जाने लगे थे। शांति सागर जी का उस समय जब उदय हुआ तो उन्होंने सारी सृष्टाचार का निवारण किया। कई कई दिन तक उपवास किए उन्होंने, इसलिए कि मैं किसी के निमंत्रण पर किसी के घर नहीं जाऊंगा, सिंह वृत्ति से निकलूंगा, मेरी विधि मिलेगी तो आहार करूंगा, अन्यथा मैं महीनों तक उपवास कर सकता हूं लेकिन किसी के कहने पर निमंत्रण पर भोजन नहीं करूंगा। उस शिथिलाचार को दूर करने वाले साधक शांति सागर जी थे, बाहर से भी और अंदर से भी। संतान भी इतने कठोर थे कि इतनी समता रखते थे, बाहर की कितनी विपत्तियां आ जाए लेकिन उससे विचेत नहीं होते, बाहर में भी इतनी करुणा उनकी होती थी, प्राणी मात्र के लिए करुणा से भरे रहते थे। एक छोटी सी घटना सुना दूं, मेरा समय हो गया, महाराज श्री को सुनना है। आचार्य शांति सागर जी महाराज, दोपहर का समय था, प्रतिक्रमण ईरिया पथ के बाद में सामायिक का समय हो रहा था। उस सामायिक में बैठने वाले ही थे कि अचानक एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा घोंसले में से नीचे गिर गया। वो सामायिक को बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं और देखा कि एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा गिर गया। अब उन्होंने सोचा यदि मैं सामायिक में बैठता हूं तो कोई भी बिल्ली कुत्ता जानवर आ जाएगा और इसे मार डालेगा, इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। उनके अंदर में इतनी करुणा एक चिड़िया के बच्चे को संभालने की, आपके मन में है? हजारों पशु काटे जा रहे हैं करोड़ों की संख्या में, लेकिन आपके अंदर में करुणा, मैं बार बार यही कहूंगा आपसे, एक करुणा का धर्म है, ये अहिंसा का धर्म है। जिसके भीतर में करुणा नहीं है वो आदमी नहीं है, वो पशु और पत्थर है। आप पत्थर हैं क्या? नहीं, आप मनुष्य हैं। करुणा पैदा करें। एक संत के हृदय में करुणा आ सकती है, आप उस संत से बड़े नहीं हो सकते, भले आत्मा की चर्चा करते हो उस संत से बड़े नहीं हो सकते हो। वो बैठे रहे, प्रतीक्षा करते रहे कोई व्यक्ति आए इसकी सुरक्षा करें, वो तो कर नहीं सकते थे, लेकिन सुरक्षा के लिए बैठे रहे। कि जब तक सामायिक प्रारंभ नहीं की उन्होंने, आप कहोगे काय के महाराज जी, सामायिक का समय होगा और सामायिक नहीं कर रहे, सब शिथिलाचारी हैं, ऐसे महाराज जी को हम नमोस्तु नहीं करते। आप कह सकते हैं, आपकी बुद्धि ऐसी है। उन्होंने सामायिक छोड़ दी और चिड़िया की सुरक्षा के लिए बैठे रहे। कहते हैं कि आज पौन घंटे का समय निकल गया, एक व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आया तो उससे कहा कि भैया इस चिड़िया का बच्चा गिर गया है, इसे फिर से उसी घोंसले में रख दो। उसने उठा करके सुरक्षा के साथ सावधानी से उसको वहीं रख देगा। फिर शांति सागर जी महाराज ने सामायिक प्रारंभ की तो 3 घंटे तक सामायिक से हिले नहीं थे। आप कहो एक बा, एक तरफ तो सामायिक छोड़े बैठे थे और दूसरी तरफ 3 घंटे की सामायिक, यही है साधना। प्राणी मात्र
पात्र को देख करके जिनके भीतर में करुणा आ जाती है, अहिंसा के संवर्धन और संरक्षण के लिए अपना मुनि पदवी जो छोड़ सकते हैं वही साधक है। और जब अपनी साधना में उतरते हैं, आत्मा की साधना में, तो घंटों बैठे रहते हैं, बड़े से बड़े उपसर्ग, सांप के उपसर्ग, चींटियों के उपसर्ग उनके ऊपर आए, लेकिन कभी वो विचलित नहीं हो गए। रंच मात्र भी शरीर से मोह नहीं रहा, सांप लिपटा रहा, रात भर सांप लिपटा रहा, गले में हिले नहीं, रात भर चींटियां काटती रही, खून बहता रहा, हिले नहीं। बाहर भी जितनी करुणा है उतने ही अपने कसायों को क्रश करने में उतने ही कठोर हैं। वो शांति सागर जी महाराज, आज हम उनका इस भावना से स्मरण करते हैं कि हम सबके जीवन में उनका ही वह मार्ग आए और हम उनके संलेखना का, साधना का अनुकरण करके अपनी आत्मा को महान बनाएं। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।
महाराज के चरणों में नमो विश्वनाथ चरण प्रार्थना करता हूँ। प्यार के मां पावन प्रसन्न पर अपने अमर वाणी से हम सबको प्रसाद करें। परम पूज्य द्वार श्यामाचार्य जी।
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंताधिमहान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितो उपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं ने सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं ने सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य शांति सागर जी महाराज के, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज के, आचार्य शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस मनाने हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। कोई भी पर्व, कोई भी विशेष तिथि हम इसलिए मनाते हैं ताकि उस तिथि के माध्यम से, उस पर्व के माध्यम से हम अपने जीवन में कोई दिशा ले सकें। शांति सागर जी महाराज से हमें बहुत बड़ी दिशा ये मिलती है कि अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को हमेशा पवित्र बनाए रखना। एक ऐसी स्थिति जैसी भगवान ऋषभदेव के समय हुई कि किसी को 6 महीने तक आहार की विधि भी नहीं मालूम थी, लगभग वैसी ही जैसी हम पुराणों में सुना करते हैं, वैसी स्थिति शांति सागर जी महाराज के समय घटित हुई। एक एक गांव में कई बार 4-4, 8-8 दिन तक लोग विधि के जानकारी के अभाव में आहार की प्रक्रिया ही नहीं कर पाते थे और महाराज का 4-4 दिन का, 8-8 दिन का उपवास अनायास हो जाया करता था। ऐसी स्थिति से शांति सागर जी महाराज हमारे बीच गुजरे और हमें इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का उपदेश दिया। खुद विपत्तियां सही, आपत्तियां सही, इसके बाद भी अपने मोक्ष मार्ग पर वो अटिक रहे। मैंने आपसे कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की शिक्षा दी उन्होंने। सम्यक दर्शन की शिक्षा ऐसे दी, कितना निर्मल उनका सम्यक दर्शन रहा होगा, कैसे 8 अंगों से युक्त उनका सम्यक दर्शन रहा होगा। एक बार जब किसी ने किसी भ्रष्ट साधु के बारे में बात की उनसे कि वो तो बहुत शिथिल हैं, वो तो बहुत भ्रष्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि यदि तुमने अपनी कसौटी पर परख के उन्हें देख लिया है, शास्त्र की कठोर कसौटी पर परख के देख लिया है कि सचमुच वे अपराधी हैं, तब तुम उनसे अपना संबंध भर विच्छेद कर लेना, पर उनकी निंदा मत करना, तुम सिर्फ इतना कर लेना, क्योंकि उनकी निंदा करके उनका तुम कुछ नहीं कर पाओगे पर अपने समय दर्शन की हानि अवश्य कर लोगे। इसलिए मुझे तुमसे सिर्फ ये कहना कि वो अगर भ्रष्ट हैं तो तुम उनके उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लो, उनको प्रणाम इत्यादि उनकी भक्ति करना छोड़ दो, पर उनकी निंदा मत करना, किसी से उनके बारे में कुछ मत कहना, वरना तुम्हारा सम्यक दर्शन समाप्त हो जाएगा। कितनी श्रद्धा की मजबूती की बात है, ज्ञान की बात, ज्ञान की बात तो उन्होंने अपने जीवन के पूरे समय में की, और सच्चा ज्ञान तो वही है जो कि शरीर और आत्मा इन दोनों की पृथक पृथक अनुभूति करवाए, वो ज्ञान सच्चा ज्ञान है। ऐसे ऐसे उपसर्ग मैं तो सुन करके जैसे पुराण में पढ़ा करता था वैसे उपसर्ग हुए उनके साथ, इसके बाद भी व्याविचल रहे, यही सच्चा ज्ञान था। और आखिरी समय उन्होंने जो उपदेश दिया 22 मिनट तक, 26वें दिन समाधि के 36वें दिन में से 26वें दिन जबकि क्रम क्रम से वे आहार का त्याग करते जा रहे थे, फिर भी 22 मिनट तक उनका अमर संदेश हुआ है, जिस संदेश में उनकी विशेष बात यह थी कि भैया डरना मत, धर्म को धारण करना, संयम धरा, संयम को धारण करना, क्योंकि इसलिए धारण करना क्योंकि पशु पर्याय में नरक पर्याय में सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ अगर महाव्रत होंगे तो मनुष्य पर्याय नहीं हो सकते और कहीं नहीं हो सकते। इसलिए यदि मनुष्य पर्याय नहीं है तो सम्यक दर्शन के साथ भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ महाव्रत जरूर धारण करना। और उन्होंने भी अपने जीवन में महाव्रतों का जितना निर्दोष पालन किया, मैं तो सोचता हूं कि हम सब उतना निर्दोष क्या, उसके प्रासंग में भी नहीं है मेरे ख्याल से, मैं जैसा पढ़ता हूं उसके प्रासंग में भी नहीं। और वे अपने जीवन में इतना आचरण पार करने के बाद जो उनकी विनय देखिएगा कि वो हमेशा कहा करते थे, जब सब गुण संपन्न होने के बाद भी वो ये कहा करते थे कि भैया 3.9 करोड़ मुनि महाराज में हमारा नंबर तो आखिरी है, हम तो सबसे छोटे हैं, वो ऐसा कहा करते थे। तो हम तो ये सोचते हैं कि हमारा नंबर नंबर है या नहीं है, जब उनका आखिरी नंबर था तो हमारा कौन सा नंबर होगा बताइएगा। ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में और आज हम बैठे हैं उनके जीवन से संदेश ले रहे हैं, तपस्या करी तो तपस्या ऐसी करी कि सिंह विक्रीरित नाम का 3 दफे व्रत किया। सिंह विक्रीरित मालूम क्या कहलाता, निष्क्रीरित, जिसमें एक दिन उपास, एक दिन आहार, फिर 2 दिन उपास, 1 दिन आहार, 3 दिन उपास, 1 दिन आहार, 15 दिन उपास, 1 दिन आहार, फिर 15 दिन उपास, फिर 1 आहार, फिर 14 दिन उपास, फिर 1 आहार, ऐसा होता है। 15 दिन तक चलना पड़ता है, 15 दिन तक फिर नीचे आते हैं। ऐसा 3 दफे किया, 4 तो शुद्धि के 1235 उपवास हुआ करते, वो किए, कुल उपवास की संख्या 10,000 है। अपने 35 वर्ष के जीवन काल में 10,000 उपवास, लगभग 25 वर्ष के उपवास उन्होंने किए। और वे जो भोजन के दिन है जो 10 वर्ष, उनमें भी ध्यान रखना, 7-8 वर्षों तक तो सिर्फ दूध भात और पानी, 3 चीजें ली हैं, क्योंकि बाकी चीजों की शुद्धि नहीं जानते थे लोग। इसलिए उनको मर्यादा नहीं मालूम थी कि दूध की मर्यादा क्या हो, उसके घी की मर्यादा क्या होती, नमक की मर्यादा क्या होती, वे मर्यादा नहीं जानते थे। जब बाद बात को लोगों ने उनसे निवेदन किया कि महाराज आप तो अकेला चावल और दूध और पानी लेते हैं, क्या साधु को इसके अलावा कुछ नहीं लेना चाहिए, बोले नहीं सब ले सकता है। तो लोगों ने कहा फिर तो बहुत अच्छा, अपन का सब बनाएंगे। सब बनाया तो उसमें से सब हटा दिया और उत्तर जितना लेते थे वो ही ले लिया। तो फिर लोगों ने कहा कि हमने तो आपको सब दिखाया था और आप कह रहे थे मुनि महाराज सब ले सकते, आपने लिए नहीं। बोले अच्छा ये बताओ कि आपने जो रोटी बनाई उसके आटे की कितनी मर्यादा, कहने मर्यादा क्या, वो तो हमारा बहुत दिन से रखा हुआ था, हमने उसकी बनाई। बोले इसीलिए तो हम कह रहे हैं तुम्हें जो मर्यादा का ज्ञान नहीं है तब तुम हमें भोजन की शुद्धि क्या करवाओगे, मुझे मालूम, लेकिन 8-10 वर्ष तक किसी से मुंह से नहीं कहा कि तुम मर्यादा क्यों नहीं जानते हो। इतनी बड़ी साधना। और मुझे जो कल मैं पढ़ रहा था अचानक ही, क्योंकि पूरी किताब 2-3 बार पढ़ने के बाद भी कई कई चीजें अपन मिस कर जाते हैं, कल मुझे एक बड़ी कीमती चीज मिली कि गजपंथा का चतुर्मास किया, धारणा और पारणा पूरे चतुर्मास का व्रत था कि 1 दिन उपवास, 1 दिन आहार, 1 दिन उपवास, 1 दिन आहार, और उसमें भी 80 वर्ष की आयु उस समय हो चुकी, और 1314 का उपवास, और पूर्णिमा के दिन गजपंथ की पूरी वंदना करी फिर आहार किया। अब शक्ति का हिसाब बनाइएगा कि क्या शक्ति होगी। ऐसी जो है आत्मा की, शरीर की शक्ति नहीं भैया, शरीर की शक्ति तो सबको मिली, उसे भी ज्यादा बलवान होंगे शरीर से आज देखा जाए तो, लेकिन आत्मा की शक्ति जो अपने मन की आत्म दृढ़ता है वो उनके भीतर बहुत अधिक थी, ये विशेष बात उनके जीवन की। और वात्सल्य इतना था कि जब लगभग जो है ये मानिएगा 74 वर्ष के थे, तो उस समय एक ब्रह्मचारी फतेह सागर जी थे नागपुर के, वे अस्वस्थ हो गए तो उनसे जाके क्या कहा, सुनो कोई श्रावक तुम्हारी सेवा नहीं करेगा तो चिंता नहीं करना, हम हैं, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम व्रती हो। वो कहते थे कि एक व्रती व्यक्ति मेरे सामने आ जाए तो मैं चक्रवर्ती को एक तरफ कर दूंगा, पहले उस व्रती व्यक्ति की तरफ ध्यान। ये उनके व्रतों के प्रति निष्ठा थी, ऐसी निष्ठा, और अपने व्रतों में दोष न लगे इस बात की सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये थी कि जरा भी परतंत्रता का अनुभव कहीं होता था तो फौरन रसों का त्याग और व्रत नियम विशेष रूप से करे कर देते थे। एक बार श्रावकों के बहुत अनुरोध पर उनने फोटो खिंचवाने की परमिशन दे दी, उस समय फोटो ऐसी थोड़ी खिंचाती, विशेष कैमरा वैमरा बहुत बड़े बड़े ले आकर के पहले फिट करना, फिर महाराज बैठेंगे फिर खिंचेगी, तो उन्होंने परमिशन दे दी, श्रावकों ने निवेदन करके ले ली परमिशन, अब वचन तो दे चुके थे। अब जब वो फोटोग्राफर आया तो उसने कहा कि इतने बैठो और ऐसे बैठो, ये तरफी देखो, कर लिया उन्होंने, कह चुके थे तो सब कुछ करने के बाद फोटो खींचने के बाद 8 दिन तक लेते कितना सा था, दूध लेते थे, चावल लेते थे और पानी लेते थे, उसमें से भी 8 दिन तक दूध का त्याग कर दिया। लोगों ने कहा कि आप तो इतने तो लेते थे और दूध का त्याग, कहने भैया क्योंकि हमने कह दिया था इसलिए वचन निभाना था, मगर हमें उन क्षणों में ये अपने पद के योग नहीं लगा कि इतनी परतंत्रता, इनके अनुसार चलना पड़ा हमें, हम तो मोक्ष मार्ग पर भगवान के बताए अनुसार चल सकते हो और किसी के अनुसार नहीं चलेंगे, ऐसा परतंत्रता का अनुभव करना पड़ा इसलिए हमने 8 दिन का जो अपना दूध का भी त्याग किया। इतनी कठिन तपस्या थी, इतनी कठिन साधना थी, ऐसे महान साधक जो है हमारे बीच कुछ समय पहले ही रहे और आज भी आचार्य महाराज हमारे बीच है, हम तो उन्हीं को देख करके कल्पना कर लेते हैं जो मुक्तागिरी में आचार्य महाराज ने 9 वास लगातार किए थे, तब जाकर के ऐसा लगा कि सचमुच ये आज भी ये मोक्ष मार्ग जीवित है, इस सड़ी सी देह के द्वारा भी कोई 9 उपवास लगातार कर सकता है। 10वें दिन मुस्कुराते हुए चरिया की लूट करके 4 अंगुली पानी लेकर के मूंग की दाल का वापस आ सकता है, फिर भी खुश है, ऐसी साधना आज भी है। तो भैया शरीर आश्रित, लेकिन अकेले शरीर आश्रित नहीं है, आत्माश्रित भी है, बिना आत्मा की साधना के शरीर सरता नहीं है, कितना भी किसी का मजबूत शरीर हो। इसलिए इन सब चीजों का अपन विचार करके आज क्योंकि समाधि दिवस उनका है, उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक 36 दिन तक समाधि प्राप्त की, और हम भी भगवान से यही भावना भाते हैं, हम सबको भी यही भावना भानी चाहिए कि हम व्रत नियम का पालन जरूर अपने जीवन में करके और आखिरी समय अपना समाधि पूर्वक मरण प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ बोले आचार्य शांति सागर जी महाराज।
Yeah.
सर्वत्र।